نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهدي للجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم أما بعد جب ہم بڑے بڑے بزرگوں کی باتیں سنتے ہیں یا کتابوں میں پڑھتے ہیں اولیاء اللہ اللہ کے دوست ان کے اتنے بڑے بڑے مقامات دیکھتے ہیں ان کے درجے دیکھتے ہیں صدیوں گزر گئیں لیکن کہ آج بھی ان کے نام زندہ ہے تو ان کی منقبت میں ایک ہی چیز ذہن میں گزرتی ہے ان کی تعریف میں جب بھی کسی اللہ والے کا نام آتا ہے یا اولیاء اللہ کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک بات گزرتی ہے اور وہ ان کی عبادات ہیں کبھی راتوں کو جاگتے تھے قیام تھا صیام تھا مجاہدے تھے اور کس طرح قربانیاں دیتے تھے عبادات میں ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ان کے رمضان بھی ساری رات جاگنا ان کے حج بھی منفرد ان کی عمرے بھی مختلف اور بڑی بڑی ان کی عبادات تلاوت قرآن ذکر اللہ آتے ہیں نا ذہن میں یہ نہیں آتے یہی آتے ہیں فور پھر کہتے ہیں بس یار یہی ہے ایک چیز اللہ نے انہوں نے اتنی محنت کی اتنا قرآن پڑھا اتنی عبادات کی اتنی نمازیں کی اتنے سجدے کیے اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا ولی بنا لیا میں کہتا ہوں یہ غلط ہے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے عبادت تو کی انہوں نے بہت بڑی چیز ہے عبادت کرنا جو کچھ ہی لیکن اللہ کی دوستی کا معیار یہ نہیں ہے ہم بھی کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے پڑھی ہوگی تہجد الحمدللہ تلاوت قرآن آپ بھی کرتے ہوں گے اپنی استعداد کے مطابق آپ بھی جاگتے ہیں بھی صدقات کرتے ہیں اور الحمدللہ میں اور آپ تو خیر اس بات میں نہیں آ سکتے آپ آ سکتے ہیں میں تو نہیں لیکن ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو ماشاء اللہ میخیں ہیں مسجدوں کی جو مسجد میں بیٹھے ہیں تلاوتیں کرتے ہیں قرآن کرتے ہیں ہے یا نہیں اور ماشاء اللہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو حجوں پہ عمروں پہ اور ایسے جاتے ہیں جیسے ماشاء اللہ یہاں سے برمنگھم جا رہے ہیں بالکل اس سے بھی نزدیک اللہ پہنچاتے ہیں ان کو تو بھائی پھر وہ کیوں نہیں بن جاتے عبدالقادر جیلانی یا مجد السانی کے ٹائٹل ان کے ساتھ کیوں نہیں لگتا اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اور کوئی دلیل ہے آپ بھی سوچیں لگتی بات ہی نہیں لگتی تو بھائی مجاہدہ تو ابھی ہے بہت ابھی لوگ کرتے ہیں اپنے اپنے استاد کے مطابق اب کیوں نہیں بن جاتے عبدالقادر جیلانی خواجہ محمد الدین چشتی کا ٹائٹل اب کیوں نہیں لگ جاتا میرے بھائیو وہ جب نماز پڑھتے تھے نا تو اس کے ساتھ ایک اور کام بھی کرتے تھے جب رات کو جاگتے تھے تو نہ صرف رات کے ہی جاگنا تھا اس کے ساتھ ایک اور کام بھی تھا ان کا جب تلاوتیں قرآن پڑھ کرتے تھے قرآنوں کو ختم کرتے تھے اس کے ساتھ ایک اور بھی کام تھا ان کا وہ کیا کام تھا اس کام نے ان کو جو ہے ولایت عطا فرمائی وہ ہم نہیں کرتے بس فرق یہ ہے رمضان ہم نے بھی گزارا رات کو ہم بھی جاگے جناب لیلۃ القدر ہم نے بھی منائی ہم نے بڑے بڑے کام کیے लेकिन वो जो करते थे सब कुछ के साथ एक काम करते थे, हम वो काम नहीं करते। वो क्या काम था? जब वो नमाजें पढ़ते थे तो सुबह उठ के किसी की गीबत नहीं करते थे, जब वो रमज़ान के अंदर एतकाफ़ करने के बाद बाहर निकलते थे तो किसी पर जुल्म नहीं करते थे, किसी से फ्लाड़ नहीं करते थे, रिज़्क हराम नहीं कमाते थे। छोटी सी भी किसी का दिल तोड़ना उनके लिए क़यामत होती थी, कुर्बानी देने में कोई दलेर नहीं करते थे। हम सारे दिन मस्जिदों में बैठे रहे, बाहर निकलने के बाद सबसे पहले जो काम करेंगे तो किसी की गीबत कर देंगे, किसी झूठ बोल देंगे, किसी जुल्म कर देंगे, किसी को गाली दे देंगे, किसी के बारे में बुरा सोच लेंगे, किसी से हसद कर लेंगे, किसी से चोरी कर लेंगे। देखा फ़र्क? तो हकीकत यह है कि उनका यह काम नहीं था, इबादत वो भी करते थे लेकिन इस काम के साथ नहीं करते थे। तो अल्लाह सुबहाना ताला ने उनको जो विलायतें दी हैं, जो मुकामात दी हैं, वो अखलाक हसना पर दी हैं, इबादत पे नहीं, जागने पे नहीं, भी नहीं। असल में जो उनको इतने मुकाम अता फरमाए गए उनके उनके अखलाक के अखलाक पर दिए गए। अल्लाह सुबहान तआला के नज़दीक जो दोस्ती का मियार है, अपने क़ुर्ब का जो मियार है, अपनी मोहब्बत का जो मियार है, वो क्या है? अखलाक हसना है, बेहतरीन अखलाक, खूबसूरत अखलाक। फिर इबादत दूसरे दर्जे में आती है। इबादत बड़ी चीज़ है, ये नहीं इबादत है, खाली अखलाक से काम नहीं बनता ना, अल्लाह के हुक्म भी तो मानने पड़ते हैं नहीं। लेकिन आज हमारे यहाँ ये मामला है कि भाई हम ये समझते हैं कि इसका नाम है इबादत, विलायत है, बस इसी पे काम चल जाएगा, इसी पे जोर मारते हैं, खूब मारते हैं। और फिर कहते हैं कि ये क्या मामला है हमारे साथ, कोई ख्वाब नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है, कैसी बात नज़र नहीं आ रही। वजह यह है कि उस नमाज हमने पढ़ी, सारी रात तहज्जुद पढ़ा, तहज्जुद पढ़ के बाहर निकले, सीखी गीबत कर दी, सारी की सारी उसके खाने में चली गई, ट्रांसफ़र हो गई, झूठ बोल दिया चली गई, जुल्म कर दे चली गई, फसाद कर दे चली गई। गहरी से मामलात माशरात, यानी यही हमारे जो हैं कारोबार, यही जरिए हैं हमारी इबादत को अल्लाह तक पहुँचाने के, यही इबादत अल्लाह पाक ने हम इसको छोड़ देते हैं, उस तरफ बहुत जोर लगाते हैं। और जब उनके बारे में सोचते हैं तो हम समझते हैं कि शायद वो यही इबादत करते थे ना, तो इस वजह से वो जहाँ इतने मुकाम पे पा गए, ये सोचते थे ना आज तक। लेकिन सोचें आप, ये बात नहीं। किसी भी अल्लाह के वली को आप देखें उनकी ज़िंदगी के अंदर, सबसे बेहतरीन जो आपको अट्रैक्शन देगा, सबसे बेहतरीन चीज़ आपको अट्रैक्शन देगी, जिस पर आपकी आँखों में आंसू निकलेंगे, उनका अखलाक होगा। मैं अपने हजरत को भी देखा है, जहर मिले तो वो कुतुब गौस अब्दाल सभी एक, जो उसका शेख होता है वही होता है इसके लिए, और थे भी वाकई इतने दर्जे के बुजुर्ग थे कि शायद अब ज़माना ऐसा बुजुर्ग ना पैदा कर सके। वो एक तो वाकत जहन में है, सारे तो उनकी सारी ज़िंदगी की नूरी है अल्हम्दुलिल्लाह, कि पता लगता था आदमी का, सख्त सर्दी का ज़माना था, हमारे यहाँ सर्दी बहुत सख्त पड़ती है, हमारे इलाके में बहुत सख्त सर्दी होती है, वहाँ पर सर्दी के इंतज़ाम तो नहीं होते, कोई हीटर शीटर। तो यहाँ से कोई साथी हमारे हजरत के पास मुलाकात के लिए चला गया अचानक पाकिस्तान से उनके खानकाह में। तो सुबह के वक्त 3-4 बजे खानकाह खुलती थी, वहाँ पर दरवेश आना शुरू हो जाते थे, अपने जिक्र अस्कार पर लग जाते थे, मुराकबात पर लगते थे। पहले वक्त में वहाँ फजर होती थी, हजरत ही पढ़ाते थे, क्योंकि वहाँ जो सुबह का मराकबा 1.5 घंटे का 2 घंटे का होता था, असद का तो पता नहीं चलता था कितने 2 घंटे चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह सख्त सर्दी है, बस वो टाट समझते हो वो लटका होता था, अंदर चटाई होती थी, और कुछ ने कंबल, किसी के पास कंबल भी नहीं होता था, फ़कीर माँ बेचारों के पास चादर भी नहीं होती थी ओढ़ने के लिए, इतनी सख्त सर्दी कि आप हाथ अपने उससे नहीं निकाल सकते थे, कुछ भी सर्दी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हजरत बस ऐसे करके मारते थे चादर फजर के बाद, बस ऐसे मुड़े और ये मारा और गए, फिर 2 घंटे, फिर जब सूर्य निकलता था तो उसके बाद फिर शराब पता चलती शराब। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की मुराकबात अल्लाह ने हमें तौफीक दी करने की, बड़ा शुक्र अल्लाह का फजल है, ऐसे लोगों के साथ बिठाया। तो वो सुबह सुबह कि पहुंचता सफर करता हुआ पंजाब से शख्स साथी, और जाने बाबा पता ही क्योंकि पंजाब से जब आप इसी जगह इन जगहों पर जाए ना तो वो फॉरेन कंट्री बन जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल बलूचिस्तान में इलाका है, वहाँ की तहजीब मुख्तलिफ, सब चीज़ें मुख्तलिफ, तो ज़ाहिर सफ़र लंबा और हर चीज़ अजीब होती है वहाँ पर। तो वो आया तो वो पंजाब से आया था लड़का, तो ढूंढता 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 वो पहुँच गया खानक की तरफ, और पहुँच के जनाब तो उसने देखा अब दो ढाई बजे थे, सो दो बजे होंगे, दरवाज़ा खुला था खान का, हो गया थका हुआ था, तो उसी हालत में कोई कपड़े उसके पास खास नहीं था, अब अंदर का दरवाज़ा भी नहीं खुला था, सहन खुला हुआ था, तो सहन के कोने में उसको नींद है, गनुदगी है, वहीं लेट गया। हजरत रहमतुल्लाह दो ढाई बजे, ढाई बजे तीन बजे तकरीबन तशरीफ लाए, तो उनके पास एक कम्बल सा होता था, सख्त सर्दी थी, तो अंदर आकर देखा एक मुसाफिर और लेटा है, तो कम्बल उतारा अपना, इतने ज़ईफ़ आदमी थे, उतार के उसको दे दिया, खुद सर्दी में बैठे रहे। पूरा सुबह तक उन्होंने कम्बल उसे नहीं लिया, मांगा भी नहीं, सर्दी के अंदर क्या हाल होगा मुझे आप बताएं। एक वाक़ा ऐसा था कि भाई इसी तरह बहुत सर्दी रात थी, तो मैं खानकाह में था, शाह के बाद बैठा था, एक शख्स हजरत का खास तो नहीं था, मुझे तो मुझसे था, तो वो ऐसे ही आता था, अजीब आदमी था, दो ढाई बजे मतलब रात की कोई आखिरी बस से वो आया था, और बजे होंगे शायद 11 बजे होंगे उस वक्त, तो मैं उसको खानकाह में था, अकेला ही था, सर्दी को सख्त आती थी, तो मैंने देखा ये किधर आ गया मौलवी, तो मौलवी शबी कहते थे उसको, तो बैठ गया, थोड़ी देर बाद देखा जनाब तो हजरत के घर से इतना बड़ा प्याला सफेद गर्म गर्म रोटी है उसके लिए, रात के तकरीबन 11-12 बजे, तो मैं देख रहा था, मैंने कहा मौलाना जी क्या किया आपने, हजरत का तो खाने है ही नहीं बेचारों के पास, उनके पास तो खाना अपना ही नहीं है खाने के लिए, पति कितने दिन से फाका होगा उनके घर, तो चूल्हा चूल्हा चलते ही नहीं देखते हैं, वहाँ तो कहना नहीं 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 हमारा हजरत हमारा मिजाज पहचानता है, तो मैं सोचा भाई होगी कोई दही वगैरह रोटी खा रहा होगा, तो मैंने उसका एक निवाला मुझे भी दे दें, तो रुकन कहता नहीं नहीं आप नहीं खा सकते, मैं कह जी मुझे दे दें कि दे दें, खैर मैं नज़दीक जाके एक निवाला जो लिया तो बिल्कुल खालिस मलाई थी वो मलाई, तो मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए, मैं क्या बोला ना इतनी तकलीफ दी आपने, तो कोई कहाँ से लाए होंगे ये रोटियाँ, कैसे बनाई होंगी उन्होंने, उनके घर तो कुछ भी नहीं है, पता था बिल्कुल फाके होते, कहने नहीं 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 हम उनको पता है हम मलाई ही खाते हैं सिर्फ, तो पता नहीं किस जगह से हजरत जाके उस रात को खरीदी होगी उसके लिए, पता था कि यह आदमी मलाई खाएगा मेरा मेहमान है, तो वो मलाई ही लेकर आए उसके लिए, रोटी ही कहना बनवा कर लेकर आए और खुद फाके से थे। तो जब आप देखते हैं किसी भी आप अल्लाह वाले की ज़िंदगी को देखें, तो जब आदमी इस तरफ जाता है तो पता लगता है कि हकीकत जो है अल्लाह तक पहुँचने का तरीका यह है कि इन्होंने अल्लाह की मखलूक से प्यार किया है, वो जो अखलाक है इनके बुलंद हैं, इनके अंदर कुर्बानी है, ये किसी पे जुल्म नहीं करते, किसी के साथ ज्यादती नहीं करते, तो हकीकत ही है, हमारी मेहनत का रुख जो है दूसरी तरफ चला जाता है और फिर जिंदगी जाया करके चले जाते हैं, और जिस वक्त वो इंसान कब्र में जाता है तो इतने हिसाब देने होते हैं, उसने वो घमंड करता है कि मैं तो इतनी इबादत करके आया, इतनी मेहनत की है, नमाजें देखते हैं, अपने रोज़े देखते हैं, अपने हज देखते हैं, उम्र देखते हैं, और कब्र में जो हकीकत खुलती है, और जब उन गुनाहों को देखता है जो झूठ के गुनाह थे, जो गिबत के गुनाह थे, जो हसद के गुनाह थे, जो जुल्म के गुनाह थे, जो किसी के साथ ज्यादती करने वाले गुनाह थे, फिर वो भूल जाता है कि मैं अरे ये क्या हुआ, मैं किस दुनिया में आ गया, बताएं क्या ऐसा हो सकता है कि नमाज पढ़ें और आप किसी के लिए जुल्म करें तो उस नमाज से आपको वो गुनाह ख़त्म हो जाएगा, नमाज पढ़ने के बाद नमाजी का गुनाह ख़त्म हुआ कि आपने नमाज अदा कर दी, अब नमाज का आपका गुनाह ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, लेकिन नमाज के बाद अगर आपने किसी के साथ जुल्म किया है, ज्यादती की है, किसी को गाली दी है, किसी के साथ हक मारा है, छोटा सी कोई बात है जो गलत है, तो उस वो कैसे, वो कहाँ गया, वो किधर गया, वो झूठ कहाँ गया, वो फ्रॉड कहाँ गया, वो हराम कहाँ गया, वो तो ख़त्म नहीं हुआ नमाज से, वो तो जिक्र से ख़त्म नहीं हुआ, नहीं समझिए बात, वो कहाँ ख़त्म हो गया, वो तो खत्म नहीं हुआ। मेरे भाई मुजाहिदे का रंग हमें घूम जाना चाहिए अभी दूसरी तरफ, बच्चे ये फ्राइजी अदा कर लें, तहज्जुद ना पढ़ सकें ना पढ़े, रातों को ना जाग सके तो ना जागे, दस्त कुरान ख़त्म ना कर सकें तो ना करें, दस्त उम्र हज ना करें, लेकिन एक चीज़ करें कि झूठ ना बोलें, किसी से जुल्म ना करें, किसी की गीबत ना करें, किसी के साथ ज्यादती ना करें। ये है असल चीज। उधर जोर ना लगाएं, इधर जोर लगाना चाहिए इस तरफ, क्योंकि इससे बचत होगी नहीं कहीं भी। ये तो वो है कि जिससे हम दुश्मनी कर रहे हैं वही दुश्मन हमारा सब कुछ माल लेके चला जाएगा। चाहते हैं भाई इसको खत्म करना या नहीं है? आना चाहिए, क्योंकि ये सलाही मजलिस कहा जाता है इसको, मैं अपनी सलाह करने आया हूँ आपको आपकी बरकत से। तो ये है इसका एक बड़ा कीमती नुकता, हमें अल्हम्दुलिल्लाह इबादत अल्लाह जी तौफीक देने करें, लेकिन इस तरफ कभी ध्यान गौर मारें। एक बार ही नहीं, कम टू हाउस, अपने घर में देखें, आप घर में आ जाएं, बच्चे से क्या अखलाक है आपका, आपकी बेटी से आपका क्या अखलाक है, आपका बहन का आपके साथ क्या अखलाक है, और फिर तो वो तो बहुत ही बड़ी बात है कि आपको और आपकी बीवी के रिलेशन कैसे हैं, आपके अंदर घर घर में माहौल कैसा है। 99% हमारे घरों में टेंशन है, 99%, 1% में मैं पता नहीं कम कर रहा हूँ, 99% बीवी से लड़ती है, हम बीवी से। ये तो एक जो तुम्हें नीचे से लिया है ना, तो जो मेन चीज़ है मियाँ बीवी, तो उसके साथ फिर हमारा फैमिली कल्चर वो तो बहुत ही खतरनाक है। सास बहू, बहू सास और ससुर बहू, और जहाँ नंद हैं ये जहाँ हमारे कर्ज में चढ़ती हैं। मुझे वो कि एक घर दिखा दें ऐसे, मुसल्ले बड़े बड़े रंगीन होंगे, जानमाजें बड़ी बड़ी होंगी, तस्वीरें लटकी होंगी, कुरान पढ़े होंगे और सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन सुबहानअल्लाह घर में आप झाँक के देखें उस मियाँ और बीवी के दिलों में क्या है, सोचें कहाँ की हुई इबादत ये। और हम इबादत हर आदमी, मेरा भी ये है आपको, ये कि अल्लाह हमें अपना दोस्त बना ले, ये सारा हम इसीलिए कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें अपना दोस्त बना ले, यही दुआएं मांगते हैं, ये कर ले। लेकिन इस तरफ कभी जहाँ ये कुछ नहीं हमारे को, एक हमने नमाज पढ़ ली, एक हमने चिल्ला लगाया है, हम जनाब एक तबीक में चिल्ला लगाए, हम नमाज पढ़ ली, हमने बहुत काम कर लिया, कुरान पढ़ लिया, मस्जिद में बैठे हैं, शाम को शाह के बाद बड़े गुरूर से जाएंगे, खाना ले आ भाई, क्योंकि बहुत बड़ा काम करके है वो, रिटायर हो गया बुढ़ा, तुम्हें काम है और क्या करना है, मस्जिद का कारपेट तोड़ने और तुमने वहाँ क्या करना है, जवानी में कहा था कितनी देर बैठता था, क्या आसान कर दिया मस्जिद में बैठ, उसमें भी नुक्ताबाजी, इधर उंगली उधर उंगली, ये कर फलना कर, वो बत्ती छेड़, इसको छेड़ इसको छेड़, बुराना मानना मेरी बात का, ये मैं आप, क्योंकि हम तो उन लोगों में बैठे हैं जहाँ हमने भी इस्लाह कराई, तो वो भी ऐसी बातें करते थे, तो आप मेरे पास हैं तो मैं भी फिर ऐसी बातें करूँगा, क्योंकि इंशाल्लाह फ़ायदा देगी। तो ऐसे मस्जिदों को कारपेट खराब करने से क्या फ़ायदा, क्यों ज़ाय करते, क्यों धोखा देते हैं इंसान अपने आप को, मुझे बताए क्यों धोखा देते हैं। भगवान कहते हैं तुम अपने आप को, अपने नफ्स को धोखा दे रहे, तुम इतना आसान दीन है अल्लाह की दोस्ती, सुबह जो कहता है कि मैं अकबर वरीद हूं, मैं तो तेरी शहर से भी गरीब हूं, उससे दोस्ती ना हो, ताजू की बात है। आज तो यह है कि आप लाखों मील दूर है तो पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, ट्विटर प्यूटर टेलीफोनों पर, उससे आप दोस्ती मान लेते हैं बैठे बैठे, और इतनी पक्की दोस्ती हो जाती है कि जो साथ करने वाले की दोस्ती होती, जो आप हजारों मील बैठ के आप दोस्ती कर रहे हैं बैठ से और ये मैसेजेस वगैरह से, होती है नहीं होती, देख भी लेते हैं आजकल तो, सुना एक दूसरे को उसमें भी चल जाता है काम है या ना ऐसे। तो फिर ये भाई अल्लाह तो कुछ शायद एक से भी करीब है, तो अल्लाह से दोस्ती नहीं होगी, पता है क्या हमारी नमाजें ऐसी, इबादत जाया की, नमाज जात की, सलात का जागना जाया किया, किसी घर में किबर घुसा हुआ है, किसी तिकबर घुसा हुआ है, किसी उजब घुसा हुआ है, किसी में कुछ घुसा हुआ है, हजारों किस्म के प्रॉब्लम हमारे दिलों के अंदर घुसे हुए हैं और कहते हैं निकलते ही नहीं, ये क्यों हो सकता है ना निकले। आज मैं आपको एक छोटी सी इबादत बताता हूँ, कसम खा कहता हूँ कि सारे के सारे निकल जाएंगे, वो खाते हैं कसम, क्योंकि मेरे आका ने भी कसम खाई थी, तो मैं भी कसम खा रहा हूँ, निकलेंगे से ना फायदा क्या आपको यहाँ आने का, मेरे यहाँ बैठने का? जिक्र करने तो नहीं है, हम तो इसलाह के लिए हैं, अल्लाह पाक में जब हमारी इसलाह होगी, झूठ नहीं गिरेगा तो जिक्र फायदा देगा ना, ये नहीं भी जब ये कनेक्शन मिलेगा, ये ट्यूब में आप जितनी भी लगा दें, बाहर मीटर लगेगा तो लाइट आएगी उसमें, जब मीटर नहीं लगेगा तो लाइटें कैसे आएंगी? तो असल मीटर तो इंसान के अखलाक है, जब नहीं होगा तो जब तक हमारी नमाजें क्या चमकेंगी, हमारी इबादत क्या चमकेंगी, हमारे एतकाफ क्या चमकेंगे? है कितना मुश्किल काम है, माशरा बनाना है हमने, अपने मामलात भी हमने बनाने हैं, घर भी अच्छे करने हैं, कारोबार भी सही करने हैं, झूठ भी ना हो, गिबत ना हो, ऐसी नमाज पढ़े ना झूठ हो, ना गिबत हो, ना हसद हो, ना बुराई हो, हो सकता है इट्स पॉसिबल, अल्लाह ने कहा है नामुमकिन कैसे है? इतनी बड़ी गारंटी आ रही पीछे से, अनंस रदी अल्लाह ताला काला काला रसूल अल्लाह सल्लम क्या कहते हैं, देख काला काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ्सिही बियदिही, मैंने जो कसम खाई है तो अल्लाह के नबी ने भी कसम खाई, जिसके हाथ में कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं। देखिए इस तरीके से अल्लाह के नबी ने ये बात की, और अनस रदी अल्लाह ताला रवायत फरमाते हैं, बिल्कुल कसम खा के गई ला यमनु अब्दु, कोई मर्द कोई औरत मोमिन हो ही नहीं सकती अल्लाह के नबी ने कहा। भलाई तो बहुत बड़ी चीज है, आंख खुल जाती है आदमी जब असल दीन पता लगता है, खुली है ना आंखें, हाँ कब्र देखनी चाहिए गौर से, इन पे घमंड ना करें, ये बात आज हम कर रहे हैं। ला यूमिनु अल्लाह के नबी फरमाते हैं अबदू, कोई बंदा कोई बंदी जो है वो मोमिन नहीं हो सकती, ईमान वाली नहीं हो सकती, जब ईमान वाली नहीं हो सकती तो क्या होगा, और क्या क्या है, यूमिनु यूमिन नमाज ही पढ़ता है, ईमान वाला नमाज ही पढ़ता होगा, रोज़ा भी रखता होगा, आज भी करता होगा, ज़कात भी देता होगा, सदक़े भी देता होगा, जिसको अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मोमिन ईमान वाला, ला यूमिनु कहते मोमिन हो ही सकता वो आदमी, वो इंसान बेशक चाहे नमाज पढ़े चाहे कुछ करे नहीं हो सकता। हत्ता अब वो इलाज आ रहे हैं, वो मैं आपको इबादत बताने लगा हूं, अगर ये इबादत हम कर लें अल्लाह के फजल से सारे गुनाह निकल जाएंगे। क्या कहा, हत्ता नहीं हो सकता कोई मर्द जब तक के युहब्बुल अखी मा युहब्बुन नफ्स, सुभान अल्लाह, जब तक वो अपने लिए जो चीज पसंद करता है दूसरे के लिए पसंद ना कर ले, इतनी सी इबादत है, सिर्फ इतनी सी इबादत है कि जो इंसान अपने लिए कोई चीज पसंद करता है जब तक दूसरे के लिए भी वो चीज पसंद ना करे वो इंसान क्या है, मोमिन, बेशक नमाजें पढ़े, बेशक खाना खावे, चढ़े, किसके जबान से निकल गया, अल्लाह के नबी सुन कह दी बात तो कह दी खत्म, आया माशरे की तरफ इस इबादत को देखते हैं, क्या कह है कि भाई जो तुम अपने लिए पसंद करो वो किसके लिए पसंद करो, आबिद के लिए, जाहिद के लिए, शील के लिए, फलां के लिए, फलां के लिए, दुश्मन के लिए, दोस्त, ये इस्लाम है जिसको आज बदनाम कर दिया हमने, कहते गंदे गंदे नाम आ गए इस्लाम पे, पूरी इंसानियत को पैगाम दिया जा रहा है, यहां कोई तशखीश ऐसी है ही नहीं, इंसाफ के मामले में, रहम के मामले में, किसी मामलात उठाकर देख लें, वहां पर ये नहीं कि गैर मजहब है, ये फलां है, कोई तशखीश नहीं है, पूरा इंसाफ मिलता है उसको इस्लाम, इस्लामी दुनिया के अंदर, इस्लाम शहर के अंदर, इस्लाम मुल्क के अंदर पूरा इंसाफ मिलेगा, पूरी बात होगी, पूरी गारंटी होगी, इसकी हिफाजत होगी, जान की, माल की, औलाद की पूरी हिफाजत की जाती है उसकी, वही सजा उसको होगी जो एक मुसलमान ने सजा दी है तो जुर्म किया है तो जो उसने उसके साथ ज्यादती की उसको भी वही सजा दी जाएगी जो उसने उसका ज्यादती की है। ये क्या है इस्लाम, दबा दिया हमने इस्लाम को बिल्कुल, खुद भी भूल गए, लोगों को बुला दिया कि इस्लाम क्या चीज़ है, जब ये कोई लोग ऐसी बातें सुने तो दा भागे ना इस्लाम की तरफ, ये इस्लाम पूरा इंसाफ, एक तरफ मुसलमान है, एक तरफ दूसरे मजहब का, किसी मजहब का भी आदमी है, बुत प्रस्त है कुछ से, दोनों इंसाफ होगा, ज्यादा इसने की है इसने की है, अगर मुसलमान ने की है तो उसको वैसे ही कोड़े पड़ेंगे, वही सजा होगी जो उसको होनी चाहिए थी, हाँ ये नहीं होगा ये गैर मुस्लिम है इसको जो ना पकड़ लो उसको छोड़ दो, सवाल ही पैदा नहीं होता, जुल्म का नाम ही नहीं, फसाद का नाम ही नहीं, कत्ल का नाम ही नहीं, खून और गारत का नाम ही नहीं है इस्लाम के अंदर, तसव्वुर भी नहीं है इस चीज़ का, वहां तो सिर्फ जो नाम है उसका अमन नहीं और अमन सुकून ही सुकून, शांति शांति है, दैट्स द इस्लाम। और जो उस पर अमल करते हैं वो वली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो इस इस्लाम को पकड़ते हैं वो वली हैं। बोले वली क्या, अल्लाह की फरमाते वो ईमान वाला है, वो ईमान वाली औरत है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये काम कर रहे हैं आजकल, देखें हदीस बता रही है, मैं नहीं कह रहा, कि जो ये फसाद मचाते हैं, जो मुल्कों को तबाह करते हैं, जो लोगों को खत्म करते हैं, नाम इस्लाम के लेते हैं मुसलमान के, लेकिन लाजू मुसलमान ही नहीं है वो लोग, सुबह अल्लाह हदीस कह रही है हदीस, ये मैं तो नहीं कह रहा, अल्लाह ने कहते मुसलमान कैसे हो सकता है, मुसलमान नहीं है ये काम कर रहा है। तो ये क्यों कहते हैं उसको मुसलमान, ये ज्यादती है, नहीं तो इनको नहीं कहना चाहिए मुसलमान है, जो मुसलमान उनको मुसलमान कहें, सही बात है ना, तो होना चाहिए ना बात, यहां से होनी चाहिए ना ये बातें, इधर से मुंबर से बातें निकलनी चाहिए। मेरे भाइयों क्या बात है, मैं एक काम इंसान कर ले, एक इबादत हम कर लें अगर, क्या हम वही चीज पसंद करें अपने लिए जो दूसरों के लिए, वही चीज पसंद करें जो हम अपने लिए पसंद करते हैं, आए हम एक एक सेक्टर जाके इस हदीस को अप्लाई करें, बस जी गुनाह मुझसे निकल नहीं रहा जनाब, आंखों में गुनाह नहीं हो रहा, जना हो जाता है जनाब, लड़कियों को देखता हूँ, औरतों को देखता हूँ, कम बैक आओ इस हदीस पर अमल करते हैं, कि अगर तेरी इसकी जगह तेरी बहन हो और कोई आदमी उसको तक रहा हो तू पसंद करेगा, नहीं जी कभी, तू क्यों करता है, सुभान अल्लाह। इस हदीस पर आप अमल करें आप पीछे हट जाएंगे, आप किसी माँ को देख रहे हैं, किसी बहन को देख रहे हैं, आप फिर रुक जाएं, मैं जो ये लज्जत ले रहा हूं उसके देखने, अगर इसकी जगह मेरी मां बहन होती क्या तू ये पसंद करेगा कि वो आदमी इसको देखे, नहीं जी तो फिर तो क्यों करता है, छुट गया ना सुना, बस एक अमल कर ले, आपने किसी को गाली दी ओ फला फला, रुक जाए कि अगर तुझे कोई इस तरह गाली दे तू पसंद करेगा जी नहीं, तो उसको गाली क्यों देता है, गाली छुट गई, सुलूम कर, कोई भी गुनाह इंसान करने खड़ा हो किसी के साथ तो पहले अपने आप पे सोच ले कि तू पसंद करता है वो, कहीं नहीं पसंद करता तो फिर क्यों करता है, छोटा या छोटा, अगर आपने नहीं किया तो उधर से क्या आ रहा है, वही क्या रही लाजुम, तू अगर ये पसंद करेगा कि तू दूसरे को तो गाली नहीं दे रहा, अपने तू पसंद नहीं करता तो पीछे कहा जाएगा ये लाजुम, तो तू मोमिन उठेगा नहीं, लपेट ले अपनी इबादत को, उठेगा नहीं, तो किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, घर के अंदर जो बताया फसाद जो हो रहे हैं, आ जाए मियाँ बीवी भी आ जाए, आप अपनी बीवी के साथ कुछ ज्यादती कर रहे हैं क्योंकि आपके हाथ में, आप ऊंचा बोल रहे हैं, फला कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, डांट रहे हैं, ठीक है ना, रुक जाए, क्या तू ये पसंद करेगा, इसकी जगह तेरी कोई बहन हो और उस वो बहन किसी घर की गई हो और उसके साथ उसका खामद ये काम करे, उसको बालों से पकड़ के मारे, उसको गाली दे, उसके साथ ज्यादती करे, उसको खाना ना दे, उसके साथ वो काम कराए कि जो उसके करने के उस्ताद नहीं है, वो नहीं करना चाहती, तू जानते उसके साथ दूसरा जुल्म कर रहा है, तू मजबूर कर रहा है, नहीं तू ये काम कर, तू ये काम कर, क्या तू ये पसंद करेगा कि तेरी बहन के साथ ये काम किया जाए, करेगा नहीं, तू क्यों करता है, सुभान अल्लाह। हो गया ठंडा मामला, बीवी आ जाए, बीवी जब अपने खामी के साथ ज्यादती करने लगे किसी मामलात में, खाना बंद कर दे, फला कर दे, या और बदतमीजी करने लगे, ताने तोशनी करने लगे, लड़ाई करने लगे, कुछ एक मिनट सोच कि अगर तेरे भाई की बीवी ऐसी हो और वो तेरे भाई के साथ ये जुल्म करे, वो ये काम कर रहा हो, तो तू भागेगी नहीं ताबीज लेने के लिए, गंडे लेने, मेरे भाई को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो, ये औरत उसको जुल्म करती है, हजारों लोग आते हैं मेरे पास के साथ है। उस वक्त ये क्यों नहीं सोचता आदमी कि तू जब ये काम कर रहा है तो तू ये पसंद कर रहा है, जी नहीं बुरी बात है, मैं अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करता, डोंट डू इट, नहीं पसीना आ जाएगा उसको, मैं क्यों उसी वक्त मसला तो दोनों में अभी दोस्ती होगी या नहीं होगी, सुभान अल्लाह। इस्लाम अजीब चीज है, देखें आप सास आ जाए, सास बड़ी खतरनाक चीज है, उसने पैंतरे मारने मारने किसी ना किसी अंदाज काम को दिखा दिया उसने अपना, गैर है वो बेटा है वो क्या करे, अब वो औरत गैर है वो क्या करे, उसने कहना ये कर, ये है हमारा सिलसिला है ना, और बा मोस्टली जानते हैं वो कि मेरी माँ की जाती है, और एक है ना एक बड़ी प्रो है क्यों लड़ रही है कि ये आटे गूंथते हिल क्यों रही है, सास तो ये भी नहीं पसंद, आटा गूंथते हिलेगी कि नहीं क्यों हिल रही, बस इसको मार, जब कोई बहाना नहीं मिलता ना तो ये बाहर निकलाते हैं, ये एक नेचर, अब क्या है, अब उसको सोचना चाहिए सास को कि अगर तेरी बेटी के साथ शादी हुई हो और उसकी सास यह कर रही हो, उसको तंग करती हो, उसको नाजायज काम लेती हो, जो उसका काम नहीं कर उसको ज्यादा ही करती हो, तू पसंद करे नहीं मैं तो नहीं करूंगी, तो तू क्यों करती है? मैंने तेरे साथ होगा तेरी बेटी का, खत्म हो गया मामला। एक ऐसी ये हदीस है माशरे की, किसी भी चैप्टर को उठा के आप देखना, सुभान अल्लाह, एक ही हदीस ने पूरे माशरे को बना दिया। यानी इतनी बड़ी कसम खा के, यानी अब कितनी अहमियत होगी हमारे इस इखलाक की हमारे मजहब में। यानी उस वक्त क्या नबी एक जहन में बात नहीं कि ये तो हज भी करेंगे, ये तो उमरी करेंगे, ये तो जमजम पियेंगे, ये तो जनाब फला हरकतें, इनकी शक्लें भी होंगी, इनकी सूरतें भी होंगी, कुरान भी होंगे, इनकी मस्जिदें भी होंगी, ये सब कहाँ थे? नबी एक जब कह रहे थे, जब आप ये फरमा रहे थे, वल्लज़ी के कसम खा क्या था, वल्लज़ी नफ्सी यदि कसम खाता हूँ जात के हाथ में इसमें जान है, नहीं हो सकता मोमिन औरत नहीं हो सकती जब तक किस बैलेंस में नहीं आ जाएगा वो, कभी किसी की ज्यादा करने से पहले पहले खुद सोचेगा कि मैंने ये काम क्यों किया, मैंने किसी के माल क्यों कमाया, मैंने हराम क्यों खाया, मैंने झूठ क्यों किया। मुल्कों में आ जाए, मालिक के अंदर आ जाए, ये कहा किसी मुल्क में भी नहीं कि आप किसी मुल्क में जाकर बेईमानी करें, कहीं किसी मुआशियात में आप बेईमानी करें, कहीं टैक्स, कहीं ये कौन कहते हैं मजहब हमारा कि टैक्स खाओ, फला चीज खाओ, फला चीज खाओ, फला चीज खाओ, अगर उन टैक्स जो कुछ भी उनके मुल्क में जो उनका कानून करेंगे आपको उस कानून में चलना पड़ेगा। तो यहां भी वही बात है कि आपके कोई पैसे खाए पसंद करेंगे, आप उनके पैसे दबाए बैठे, सोचें नहीं क्या हो गया ला यूमन। अगर इस पे एक नजर मारे ना तो लगता यही है नबी इस कसम पे ये लगता है कि शायद कोई एक क्या -1% मुसलमान आपको नजर नहीं आएगा माशरे के अंदर, चले धक्के देख रहे हैं पूरी दुनिया इस्लाम के अंदर, और यही वजह है फसाद की। बास लोग बड़े बातें करते हैं कि यार आज पता नहीं क्या बात है, देखें जी 10-30-25 लाख तो होगा ना हाजी अल्लाह के फजल से, होगा नहीं होगा, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक ला शरीक लबैक, वो तो इतनी करीम जात है कि मुझे वाकई याद आ रहा है लबैक बात याद आ गई। एक बुजुर्ग थे तो वो उन्होंने अहराम बांधा मदीना मुनव्वरा से, अहराम बांध के उन्होंने ऐसे हज का जमाना था तो खड़े होकर उन्होंने लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक ला शरीक लबैक, अल्हम्दुलिल्लाह नेमत अल्लाह, बड़ी तस्बीह, ऊपर से आवाज आई ला लबैक भग जाओ, मैं कबूल नहीं करता। साथी जवान भी खड़ा था, उसने भी ये आवाज़ सुन ली ला लबैक, चल हम नहीं कबूल करते इस चीज़ को। तो उन्होंने आराम बांध के तैयार जाने के लिए, वो कहता बुजुर्गो मैंने सुन ली आवाज़ जो ऊपर से आपके लिए आई थी, अब क्यों शोर मचाए जा रहे हैं? अब जाएंगे ज़ईफ हैं, इतना लंबा सफ़र करेंगे और धक्के खाएंगे, यहीं से उन्होंने फैसला कर दिया कि हमने तेरा हज कबूल ही नहीं करना, हज करने क्या जा रहे हैं, टिक जाए। तो उन्होंने क्या जवाब दिया सुभान अल्लाह, कहता भाई तूने तो आज सुनी है आवाज़ पहली दफ़ा, मैं तो 60 साल से आवाज़ सुन रहा हूँ सुभान अल्लाह, 60 साल से मुझे ये आवाज़ आती है, मैं आराम बांधता हूँ 60 साल से यही आवाज़ ला लगता है, जा तुझे कबूल नहीं करते हम, तुम तो पहले दफा सुन के भाग गया, मैं तो 60 साल के सुन रहा हूँ, तू मुझे बता अगर उसके दरबार पे ना जाऊं तो किसके पास जाऊं, वो कितनी दफा कहता है लाला बैग, लेकिन मैं जाता ही रहूंगा देखो क्या है। उधर से फिर आवाज आई कि जा हमने 60 के 60 हज तेरे कबूल कर लिए, ऐसी जात है वो तो दूर है ही नहीं। आज हम नियत कर लेते हैं इसे एक ही हदीस पे करने के लिए कि हमारा मियार जिंदगी हो जाएगा, हम अपने हर भाई के लिए वो चीज़ पसंद करेंगे, अपनी जिंदगी का मियार बना लेंगे कि हमारे वही चीज़ पसंद होंगी जो दूसरों के लिए पसंद करेंगे, सबसे बड़ी इबादत हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, और दीन निखर जाएगा हमारी जिंदगी का। अल्लाह पाक हमें सच्चे दीन सही दीन के कदम से फरमाए, और जाहिर इबादत के साथ ये जो है ना अंदर की चीज़ें, अंदर का इनकलाब, जब तक ये नहीं आएगा ना, ऐसे ही थोड़े लोग अल्लाह वालों के पास जाते थे और इतनी इतनी जाके मेहनतें की हैं और जाके बैठे हैं और सारी सारी रातें लगाई हैं, बड़े बड़े शेखुल हदीस और बड़े बड़े आलिम और बड़े बड़े फाजिल, और जाते थे सीधे जाके जूते में बैठते थे, खिदमतें करते थे, तब जाके जिंदगी बदलती है इंसान की। इन मस्जिदों में बैठ के नहीं बनता काम, दिल नहीं बदलता यार, ये तरीका ही नहीं है। हर इबादत का एक तरीका होता है याद रखें, अगर आप ये इबादत करना चाहते हैं इखलाक की, और से اگر یہ اخلاق کی عبادت کرنے چاہتے ہیں تو اس کا تو مصلی بھی دوسرا ہے, اس کی نیت بھی دوسری ہے, اس کے سجدے بھی دوسرے ہیں, اس کے رکوع بھی دوسرے ہیں, اس کے امام بھی دوسرے ہیں. ان راستوں پر چلنا پڑتا ہے سب. جیسے ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو وضو کرتے ہیں, باختے ہیں اذان کی آواز میں, مسجد میں آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, عبادت کرتے ہیں, ہم نماز کو ادا کرتے ہیں. اسی طرح اس عبادت کو اگر کرنا ہے ہم نے, یہ عبادت ہم میں آ جائے, جیسے میں نے ایک بات بتائی ابھی تو ہم اخلاق کیا, یہ ہمیں عبادت آ جائے اس کے لیے رخوں کو پھوڑنا پڑے گا, ان جگہوں پہ جانا پڑے گا, وہ چیزیں اختیار کرنی پڑیں گی جس سے یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے. اور وہ کہیں خانقاہیں ہیں, اللہ والوں کے در ہیں, ان کے پاس جائیں, ان سے محبت کریں, ان کے سبق اختیار کریں, نیت ایک ہو کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے آئے, پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ, میں اور آپ کیسے نہیں بنتے انسان, بن کے نکلیں گے انسان انشاءاللہ, گناہ ختم ہو جائیں گے, کریں گے کوشش آج سے انشاءاللہ. آپ سمجھ جائیں گے زیادہ نماز پہ زور نہ رکھا کریں, ادھر اندر بھی زیادہ سوچا کریں کہ میں کیا کام کر کے آ رہا ہوں, کس کے ساتھ دیاتی کی ہے, فلاں کیا کی ہے. ہمارا تو حساب ہی ہے کہ بہت بڑے پیار سے مل رہے ہیں, یہ ہے جی فلاں اپنے ساتھ والے سے, بس جی بڑے ماں آؤ جی ہمارے گھر بھی آنا, غم چھوڑ سب کچھ کرتے رہتے, دل سے سب کچھ ملنے فلاں ہو رہے ہیں. اب آگے بقاعد کا موسم آ رہا ہے, آ رہے ہیں نا, اب ہم بکرا کاٹ رہے ہیں, اب گوشت تقسیم ہو رہا ہے, کہتا ہے یہ سب چیز ہے, یہ چیز ان کو دے دے, ساتھ والوں کو گوشت کا وہ حصہ پہنچایا جائے گا جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کو, کہ جو ہم پسند نہیں کرتے. ہائے ہائے, ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کتنے بڑا مزہ تو یہ ہے کہ ہم سری پسند کرتے ہیں, تو پھر اپنے ہمسائے کو پہلے سری دی جائے, یہ بھی نا تقسیم. تو ہم کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں, پہلے کیا کہیں گے یار جو فالتو پڑی چیز دے دے اس پہ. آج کل تو مصیبت خانی یہ ہو گئے نا کہ بڑے بڑے چپ وہ آ گئے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, پیپرز آ گئے, کیا کہتے ہیں, بیگز آ گئے ہیں اور ریپر آ گئے ہیں, اور پتہ اوپر پھول بھی لگا دیتے ہیں, اور یہ کر کے جو اندر سے کھولتے ہیں تو نکلتے ہیں آدھی ادھر کی بوتل ہے. واہ سبحان اللہ, وہ بھی دکھا ہوگا ایکسپائر, یہ کیا بات ہے. ایک صاحب دینے آئے گفٹ, بڑے ہنسی کی بات ہے, تو کہنے یہ آم کا ڈبہ, میں کہ مہربانی آپ رہنے دیں, میں تو آم اتنا کھاتا بھی نہیں ہوں. تو نہیں نہیں آم کو ڈبہ, تو میں آم کے لیے میں جو کھول گیا, کہتے جی تین میں نے کھا لی ہیں بس, باقی آپ کے. بھائی ہمت ہی کوئی, تم مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا اندر اتنا دل تنگ ہے, اور تھک جائیں گے وضو کر کے پھر سجدے مار دیں گے, اور سجدے مارتے ساتھ والے کو بھی, مطلب جو ساتھ والا بیٹھا ہو اس کی بھی ہماری کوئی دوستی نہیں ہے, اس سے دوستی یاری کوئی اس سے بھی نہیں ہے نا, اس سے بھی کوئی شکایت ہو رہے ہوں گے تھوڑے دنوں کے بعد, یہ کرتا ہے یا فلاں کرتا ہے, یہ ایسے کرتا ہے, اس کو دیکھ اس کو دیکھ, فلاں کو دیکھ اس کو دیکھ. شروع ہوں گے امام سے, یہ دیکھو یار کیسے کھڑا ہے, یہ وہاں سے کرتے کرتے پورے آخری مسئلے تک چلا جائے گا, پھر کہے گا او جی باہر نکل گیا, پڑھایا جی ہمیشہ, کھانا لے آؤ, بدلو, قبر آوازیں دے رہی ہے دوستو, فرو اللہ, قرآن کہتا ہے بھاگو بھاگو بھاگو, اصل دین کی طرف بھاگو, قسم کھا لی اللہ کے نبی نے, واللذی نفسی بیدی, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں جان ہے, مومن نہیں اٹھو گے, بد اخلاق انسان مومن نہیں اٹھے گا, جھوٹا نہیں اٹھے گا, کسی پہ ظلم کرنے والا مومن نہیں اٹھے گا, نہ عورت نہ مرد, گھر میں ہوتا دیکھو تو ان کو سمجھاؤ اللہ کے واسطے, اپنے آپ کو دو, ظلم نہ کرو اپنی بہنوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ, اپنے بیویوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اور عورتیں خامد کے ساتھ, خامد مردوں کے ساتھ, ساتھ سنگ کے ساتھ, چار دن کی زندگی ہے, کیوں دشمنی لیتا ہے آدمی, کیوں فراڈ کرتا ہے. اور جب کسی کو دو تو کیا دو, جو تمہیں پسند ہے وہ چیزیں دو. اب آ رہے ہیں نا بکرا ہے, دیکھتے ہیں کون کون اچھا گوشت, ٹانگ کا گوشت اس کو دیتا ہے, اور خود جو کھاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, پلے کا قیمت بنا کے کھاتا ہے, تب تو مزہ آیا نا کہ بھائی پتہ چلا کہ ہاں یہ ہے الحمدللہ کام ہوا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے, اللہ کے فضل و کرم سے اس پہ ہم عمل کرنے کی توفیق دے.